भाइयों और बहनों, मेरी दाहिने बगल में ख्वाजा साहब बैठे हैं। मेरा ऐसा कुछ ख्याल तो है कि आप लोगों को मैंने एक वक्त सुनाया तो सही, लेकिन अच्छा है कि आज भी मैं आपको वही चीज़ याद दिला दूँ। क्यों कि उनके घर में मैं तो रहा हूँ, और शायद मैंने आपको कहा था कि उस ज़माने में मेरे साथ सत्यदेव स्वामी भी रहते थे। उस वक्त ख्वाजा साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक ट्रस्टी भी थे। बहुत काम उन्होंने किया था। बाद में जब सब ने तय किया, मौलाना भाइयों ने भी तय किया कि हमारे तो असहयोग आंदोलन जोरों से चलाना है, तो वो सब निकल गए उसमें से। लेकिन जो मैं बताना चाहता था वो तो ये है कि स्वामी सत्यदेव उस वक़्त तो वो पानी भी मुसलमानों के घर में, मुसलमानों ने भरा हुआ वो पानी नहीं पी सकते थे, खाना भी न खाए। मुझको भी ऐसा लगता था, ख्वाजा साहब के साथ कोई ऐसा मेरा मेल जोल तो नहीं था, लेकिन मैं तो किसी भी मुसलमान भाई के वहाँ चला जाता था, कोई डर नहीं लगता था कि वो मुझको खाने वाले हैं या तो मुझको कुछ दर्द होने का है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो, मैंने उनको कह दिया तो उन्होंने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो पानी भी उनके लिए अलग करवा लूँगा और खाने का भी प्रबंध अलग करवा लूँगा। ये ख्वाजा साहब है। और पीछे एक मौका आ गया कि वो तो मैं चला गया था, वो मुस्लिम लीग की ही मीटिंग थी ऐसा मेरा कुछ ख्याल है, तो वहाँ पीछे आखिर में मुझको पूछना पड़ा कि यहाँ कोई सत्याग्रही है कि नहीं है। उस ज़माने में अली भाई जेल में पड़े थे और सब मुसलमान रोते थे कि वो जेल में पड़े हैं, कैसे हो सकता है। और कुछ मैंने ऐसी बातें कर ली तो थोड़ों ने रोना भी शुरू कर दिया। तो हम जब वहाँ से मीटिंग में से छूटे तो ख्वाजा साहब को पूछा, तो उन्होंने कहा कि 250 सत्याग्रही आपको मिल सकते हैं। वो कौन? तो शुएब कुरैशी, वो तो आज है मौजूद और ऐसा ही बहादुर है, उसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं है। दूसरा मुअज्जम, वो मर गए, बड़ा बहादुर आदमी था और उसने एक ज़माने में मार खाया था लेकिन किसी को मारा नहीं। और वहाँ जब ऐसा बन गया था, सब में किस्सा आपको नहीं सुनाना चाहता हूँ, तो वो मुअज्जम के वो जैसे यहाँ है क्या वो अटल, उनके हाथ में चोट लगी थी किसी ने, ख्रिस्ची लोग थे उस वक़्त, ऐसा ही हो गया तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। उसको यहाँ चोट लगी और कुछ यहाँ भी चोट लगी थी, ऐसे ही आ गई। और जिस जगह पे मैं रहता था देवाशंकर भाई के वहाँ, तो वहाँ तो एक अस्पताल बन गई थी, उसमें पहला अस्पताल में दर्दी तो मौसम बंदी था, लेकिन उसने किसी ने उस समय में न किसी को गाली दी न किसी को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो तो तकड़ा आदमी था। अगर अपना बचाव करना चाहता था तो किसी को मारना चाहता था तो मार सकता था, मर जाए वो दूसरी बात है, लेकिन नहीं, वो तो उस खेल में था। वो दो हो गए और उन्होंने कहा कि शायद आधा में हूँ, वो आधा सत्याग्रही है। तो अभी तो ऐसा है ना, उनको तो आना ही नहीं चाहिए था, मेरे से बिगड़ सकते थे, कभी क्या कर लिया। क्यों कि वो तो चाहते ही नहीं थे कि इस तरह से हिंदू मुसलमान वो हिस्सा उनका बन जाए। बहुत मेरे साथ भी बिगड़ते थे, लेकिन वो दो सगे भाई वो आपस में बिगड़े भी क्या, तो वो मेरे पास रोने के लिए आ गए, तो मैंने तो उनको हंसा दिया कि हम रोने वाले नहीं हैं। अभी रोने वाले क्यों नहीं हैं वो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो विषय वो तो वो हमारे सपरू साहब हैं, उनका भी दोस्त है, तो वो मुझको सुनाते हैं कि उनको भी बड़ी चोट लगी है कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं तो उनको भी पैगाम भेजना चाहता हूँ आपके मार्फत से सबके सबको कि वो हो गया, कांग्रेस ने किया और मुस्लिम लीग दोनों को पसंद नहीं आया, वो तो मैंने कल ही बता दिया था आपको। ऐसी चीज़ तो बन गई, लेकिन वो तो भूगोल के टुकड़े हो गए, मुल्क के टुकड़े हो गए, लेकिन क्या हमारे दिलों का भी टुकड़ा हो गया है? अगर दिलों का टुकड़ा हो गया है तो पीछे वो रोने का, रोने के लिए गुंजाइश है, तब तो रोना होगा और नहीं तो मरना होगा कि मर जाए, रो रो कर भी तो मर जाए। लेकिन अगर दिलों का टुकड़ा नहीं बना है तब तो मेरी निगाह में खैर है। इसका ये मतलब मैं नहीं करवाना चाहता हूँ कि चलो वो पीछे एक वर्ष में दो वर्ष में थकान हो जाएगी और जो जिन मुसलमानों ने ऐसा दे किया कि चलो हमारे लिए तो टुकड़ा ही होना चाहिए, पाकिस्तानी होना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। आवे ना आवे, टुकड़ा रहे हिंदुस्तान का, उसकी मुझको परवाह नहीं है, लेकिन हमारे दिलों का टुकड़ा होगा क्या? अब हिंदुस्तान जिसको कहें, लेकिन जवाहरलाल जी ने तो वो हिंदुस्तान कहने की भी मनाही की कि अगर एक पाकिस्तान बन जाता है तो क्या हमारा हिंदुस्तान बनेगा? हिंदुस्तान के माने तब ये हो जाता है उसके मुकाबले में कि हिंदुओं का स्थान, तो उसमें हिंदुओं का स्थान रहेगा और पीछे वहाँ पारसी नहीं रहेंगे, ख्रिस्ती नहीं रहेंगे, यहूदी नहीं रहेंगे और पीछे मुसलमान, मुसलमान तो अभी तो एक अलग नेशन बन गए, अलग नेशन के आदमी बने हैं, तो यहाँ तो पीछे हमारे से भी बिल्कुल जुड़े हो गए, तो पीछे मुसलमानों को कह कि नहीं यहाँ से चले जाओ। अभी ख्वाजा साहेब तो यूपी के हैं, तो पंत जी अभी ख्वाजा साहेब को यही कहेंगे क्या? उनके दोस्त हैं कि ख्वाजा साहेब यहाँ से आप हट जाइए और आपको तो अभी पाकिस्तान में जाना चाहिए, यहाँ आप ये हिंदुस्तान के रैयत नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर हम करें तब तो जो जिन्ना साहेब ने सुना दिया था कि वो बिगड़े हुए हैं, उनका दिल तो सचमुच जुड़ा ही है, हिंदू और मुसलमान दो एक बन नहीं सकते हैं। इतिहास तो उससे अलग सिखाता है, इतिहास जितना सिखाता है, मैंने आपको थोड़ा सा वो बड़े ऐतिहासिक है उनका खत तो आप लोगों को सुना दिया था, वो जयचंद्र विद्यालय का, वो बताते हैं कि जब दो लड़ते थे तब भी एक दूसरों के मजहब के बारे में तो कुछ शिकायत नहीं करते थे। और मैंने आपको सुनाया ना कि उस वक़्त कश्मीर में जैनल आबुद्दीन साहेब तो वो तो हिंदुओं के साथ यात्रा में चले जाते थे और जितने देवल देते थे उसका जीर्णोद्धार करते थे, ये मैंने आपको सुनाया। और पीछे कुंभारा जबरदस्त लड़ने वाला, अब मुसलमानों को उसने शिकस्त भी दी, लेकिन फिर भी जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ तो प्रख्यात चीज़ है, तो वहाँ तो अल्लाह नाम ऐसा खुद आया है। तो इसलिए उस जमाने में नहीं, ऐसा इतिहास में तो बहुत भरा है, आज ही हम बिगड़ जाएंगे और आज ही हम बिल्कुल अलग हो गए कि जिससे हम एक दूसरों के साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरों के साथ खा नहीं सकते हैं, एक दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी सब बात है क्या? लेकिन मान लिया कि आज तो मुसलमान बिगड़े, चंद मुसलमान नहीं बिगड़े ऐसा मानो, तो बाकी के जो बड़े हैं जो मैंने आपको अब सुना दिया, हिंदुस्तान तो एक तो जवाहरलाल जी ने तो सिखा दिया कि नहीं हम अभी हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, जब सब एक ही थे तो हिंदुस्तान तो बड़ा अच्छा लफ्ज था, इंडिया क्यों कहें? लेकिन वो कहते हैं कि आज तो मैं इंडिया रखूं लेकिन हिंदुस्तान नहीं रखूं, क्योंकि ये स्थान हिंदू का नहीं है, ये स्थान जो अपने को इंडिया में हुआ है, पैदा हुआ है और जिसके लिए दूसरा मुल्क नहीं हो उसका स्थान है, उसका स्थान है। तो पीछे एक एक पारसी तो बहुत छोटी कौम है, उसका लड़का है, उसका भी ये स्थान है, तो पारसी स्थान बन गया। तब पीछे यहूदी का है तो यहूदी स्थान बन गया, ख्रिस्ती का है तो ख्रिस्ती स्थान बन गया, और पीछे हिंदू का भी है, तो हिंदुस्तान बन गया। लेकिन आज तो कोशिश तो ये रह रही है ना कि वो कहते हैं कि बाजी जो हैं वो तो कास्ट हिंदूस है। अब मैंने बता दिया है कि कास्ट हिंदूस तो इनगिने हैं हिंदुस्तान में। अगर कास्ट हिंदूस तो माने वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो तीन की जोड़ कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी तादाद बहुत कम है। लेकिन आज उनकी चलती है वो मैं कबूल करना चाहता हूँ। लेकिन तब वो जो अछूत कहे जाते हैं, हम जिसको अछूत मानकर बड़ा पाप करते हैं, और पीछे शूद्र वो, और पीछे जो जंगली जातियाँ कहते हैं, जो जिसको रानी परस कहते हैं, वो सब उसमें से बात करोगे उसको कुछ नहीं मिल सके। और ये तीन इनगिने आदमी पड़े हैं वो हिंदुस्तान में राज चलाएंगे। अगर ये है तो जो जिना साहेब ने कहा है कि ये लोग ऐसे पाजी हैं कि सबको दबाना ही चाहता है और सबको दबा कर पीछे अपना ही काम करना चाहते हैं, इसलिए हम उसके साथ नहीं रह सकते। और हम तो बिल्कुल एक जुदी नेशन ही बन जाते हैं। जैसे एक आदमी मेरा लड़का मुसलमान बन गया तो अलग नेशन बना, तो उसको अलग नेशन मानना होगा। ये चलता है आज। तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो चीज़ इल्ज़ाम लगाते हैं उसको हम साबित ना करें, हम ना समझें, क्योंकि हम तो आखिर में तीन चौथाई पड़े हैं ना हिंदुस्तान में से। जो अलग हो जाते हैं उसको छोड़ो तो हिंदुस्तान करीब करीब तीन चौथाई सा रह जाता है, और उसमें हिंदू है, मुसलमान है, पारसी सब लोग पड़े हैं, तो एक बड़ा दरिया है। तो वो सब जो वो कहते हैं ऐसा ही हम करना शुरू कर दें, और पीछे वो तीन जो थोड़ी तादाद में है वही समझे कि सब हम ही हैं हिंदुस्तान में, तब मैं कहता हूँ कि जना साहब जो शिकायत करते हैं वो सच्ची हम साबित करेंगे। तब आप कह सकते हैं कि अभी सच्चा पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया है। तो मेरी ये उम्मीद रहती है कि आप ऐसा कभी होने नहीं देंगे। डर तो ये रहता है कि अगर हम आज सावधान नहीं रहेंगे और हम जो कहते हैं वही टोपी हम पहन लेंगे, तो पीछे हम तो ऐसे ही लायक बनने वाले हैं, और पीछे हमारे लिए कहा जा सकता है कि हाँ वो तो अलग नेशन ही, अलग नेशन क्या, अलग नेशन नहीं, पीछे तो बहुत नेशन बन गई यहाँ, कि सब कहें कि पारसी कहें कि मुझको पारसिस्तान दे दो, और सिख कहें मुझको सिखिस्तान दे दो, और वो अछूत जिसको हम कहते हैं वो अछूत स्थान ले लें, और पीछे जिसको हम रानी परस कहते हैं तो उनका स्थान ले लें, तो पीछे वो हिंदुस्तान कहीं है ही नहीं, मानी इंडिया कहीं नहीं है, और सब छोटे 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 हिंदुस्तान के टुकड़े बन जाते हैं। ये अगर ऐसा अंग्रेज भी करना चाहें तो अंग्रेज के भी लिए हिंदुस्तान में सुन जगत में कोई स्थान नहीं है। अगर हम ऐसा कर लें तो हमारे लिए कोई स्थान नहीं होने वाला है, हम अपना गला अपने हाथ से काटने वाले हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आज जो बन गई है चीज़ उसके लिए हमको रोना नहीं है, लेकिन हमारे सावधान रहना है, बहादुर बनना है, साफ रहना है, और ऐसा समझना है कि जो इस यूनियन ऑफ रिपब्लिक्स ये नाम जवाहरलाल जी ने दे दिया है। और जब पहली बहस उन्होंने की ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भी उन्होंने ये कहा कि ऐसा बड़ा बुलंद एक यूनियन हम बनने वाले हैं, तो हमको ये साबित करना होगा कि इस यूनियन में जो मुसलमान रहते हैं वो हमारे भाई ही हैं। हाँ, पीछे वो कहें कि नहीं हम तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो भी हम उनको उनके बर्दाश्त करेंगे, गुस्से में आ जाते हैं, भाग जाएं। वो कहें कि अभी तो हमारे यहाँ रहना भी अच्छा नहीं है, तो किसी को कोई मजबूरन थोड़ा रखना है, मजबूरन जैसे ये भी मजबूरन नहीं रखना चाहते थे तो कांग्रेस ने मान लिया, तो इसलिए वो भाग जाएं तो दूसरी बात है, लेकिन रहें तो उनको हमारे भाई ही ऐसा हमारे रखना चाहिए। और हम क्या रखने वाले हैं वो अपने आप महसूस करें कि वो टुकड़ा भले हो गया लेकिन हम उस टुकड़े में नहीं है, हम तो इसमें वो यूनियन में पड़े हैं, यूनियन में पड़े हैं, यूनियन की वफादारी करेंगे, यूनियन की सेवा करेंगे और यूनियन हमारी सेवा करेंगे। इस तरह से अगर सिलसिला चले और हम सोचें कि हम एक भी चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहते, तब पीछे मुझको डर क्या हो जाता है आज कि कोई मुझको पूछते हैं कि भाई अभी हिंदुस्तानी का क्या काम करना है। हिंदुस्तानी के मानी तो ये है ना कि उर्दू नहीं, हिंदी नहीं, लेकिन दोनों मिलाकर अच्छे जो उसमें से लफ्ज है कि ठेठ फारसी के लफ्ज, ठेठ संस्कृत के शब्द, वो उसके मिलावट तो नहीं हो सकती है, लेकिन देहाती लोग हिंदू हो या मुसलमान वो बोलते हैं और उर्दू लिपि में लिखते हैं या तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वो हिंदुस्तानी जबान मैंने कही है। एक ज़माने में तो वो हिंदुस्तानी बराबर चलती थी, अभी गोलमाल हो गया है तो भी उसके लिए एक खासी संस्था बन गई है, वो चलती है, लेकिन आज पूछते हैं कि वो हिंदुस्तानी अभी हिंदुस्तानी क्या बन जाए, इससे वो पाकिस्तान में उर्दू चले और बाकी का जो हिस्सा है यूनियन ऑफ रिपब्लिक्स उसमें देव वो हिंदी चले, मैं वो नहीं मानता हूँ। अगर हम माने तो हमारे सामने ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जो हिंदी का बड़ा होता है उसको भी उर्दू को मिटाने के लिए, वो बात तो सही नहीं है। उर्दू को कोई मिटा नहीं सकता है, इतनी बड़ी बुलंद जो जबान हो गई है उसको मिटाने वाला कौन है, किसकी ताकत है कि वो मिट सकती है, लेकिन कहते तो हैं। लेकिन आज अगर हम ऐसा करें कि अब तो उर्दू के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब पीछे एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, तब हमको ये सपूर साहेब जिसका नाम लिया उनको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो मादरी जबान उर्दू है, दूसरा तो वो जानते नहीं है। मैं उनको हिंदी में बात करना शुरू कर दूं और संस्कृत लफ्ज ठूस ठूस कर उसमें डालूं तो वो नहीं समझ, और उर्दू का कहो तो वो तो उनसे बढ़ के उर्दू जबान बोलने वाले बहुत कम मुसलमान मिलेंगे और कम हिंदू तो मिले, उसमें तो शक क्या है, लेकिन इससे ऐसा थोड़ा है कि वो मुसलमान बन गए हैं, वो तो खासे हिंदू हैं, उनके घर में चले जाओ तो भी पता चलता है कि वो तो हिंदू पड़े हैं। लेकिन हाँ, उर्दू जबान की अगर कोई शिकायत भी करे तो गुस्सा कर लेते हैं, काफ़ी गुस्सा कर सकते हैं कि ये कौन सी बात है कि मेरी जबान है उसके लिए तुम ऐसी बात करोगे, तो उनका हम क्या करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि वो हिंदुस्तानी का जितनी ज़ोरों से काम चला है उससे 10 गुना ज़ोरों से हम काम चलावे, तब तो हम बता सकते हैं कि नहीं, हम तो जैसा दूसरों को चाहते हैं इतनी ही मोहब्बत से मुसलमानों से भी हम मोहब्बत रखने वाले हैं। ये तो हुआ, लेकिन आपके हिंदुस्तान में यूनियन में कितनी मुसलमान जगहें पड़ी हैं, पाक जगह दरगाह पड़ी है, उसका क्या होगा, क्या उसको आप ढाने वाले हैं? अगर आप ढा दें ऐसा किसी के दिमाग में भी आ जावे तो उसका नतीजा मैं आपको ये कहता हूँ कि हमको ढाना और हम बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो ख़त्म हमको कोई दुनिया में तो आज तो चलता नहीं है ऐसा कि दूसरे आदमी आवे और हमारे साथ लड़ाई करे और ख़त्म करें, लेकिन हमारे गुनाह से हम ख़त्म हो जाने वाले हैं आखिर अंजाम में। ये जो हो गया है ना, उसमें एक मैं तो समझता हूँ कि उसमें कोई ईश्वर का चमत्कार ही है कि दोनों का इम्तिहान होने वाला है, कि एक तरफ से मुसलमानों का कि पाकिस्तान में क्या करते हैं। आज मैंने वो पाकिस्तान में क्या करते हैं उसको सोचा नहीं है, वो मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, मैंने काफ़ी कह दिया। आज तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में उसका नाम तो अभी खासा दूसरा कोई चुने तो अच्छा है, नहीं तो यूनियन ऑफ इंडियन रिपब्लिक्स, उसमें क्या होगा, तो उसमें तो एक बड़ा हिस्सा पड़ा है, उसमें हम बिगड़ जाते हैं, उसमें हम ऐसा ही करते हैं कि नहीं अभी तो जितना अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पड़ी है उसमें तो मैं गया हूँ, ख्वाजा साहब उसमें ट्रस्टी से, उसका क्या अभी वो इस्लाम को इस्लाम की बड़ी कल्चर वो तो वहाँ है, तो उसको हम ढा डालेंगे या तो ये कहेंगे कि अभी यहाँ से उठा जाओ मुसलमान। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे पागल कोई भी हिंदू बनने वाला ही नहीं है, और हिंदुस्तान में रहने वाला जितना है वो कोई ऐसा पागल नहीं बनेगा, लेकिन यह कहेगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज तो उसके हम ट्रस्टी बन गए हैं, जैसे बनारस में जो हिंदू यूनिवर्सिटी है वो तो मालवीय जी की है, और मालवीय जी की जो इतनी बड़ी भारी चीज़ है वो तो दूसरी बात है, कोई मौका होगा तब मैं सुनाऊंगा। लेकिन इसलिए हमको तो ये कहना होगा कि या तो उनकी कोई पाक जगह पड़ी है, या तो उनके उनकी तालीम गाह पड़ी है, या तो ऐसी कोई भी चीज़ पड़ी है, सब चीज़ यहाँ इतनी सुरक्षित रहने वाली है जितनी सुरक्षित दूसरी जगह पारसी अग्यारी है, या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सब की रक्षा और सब के लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका, और वहाँ भी जो अछूत है, जो जंगली माने जाते हैं, उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए, इतना उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआ छूत को एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। तो एक तरफ से ये हमारा इम्तिहान हो रहा है, और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो इम्तिहान हमारे लिए आज हो रहा है उसमें हम 100 हिस्सा पास होने वाले हैं, और ये मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है, और आप लोगों से भी मैं तो ये मांग लूँगा कि हम ये करें। और इसमें कोई शर्त नहीं है कि हाँ वो तो हम करने वाले हैं कि वो करें तो हम भी करेंगे, वो तो बनियापन हुआ, बनियापन का आज नहीं है, वो मौका चला गया। अब ऐसा तो अंग्रेजी में तो कहते हैं कि टिट फॉर टैट, वो तो चलता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो ज़माना चला गया, आज जो ज़माना है वो तो ये है कि जो हमको गाली देता है, मारपीट करता है, उसके सामने मोहब्बत है। जो झूठ बोलता है उसको अगर जीतना है तो सच से, हक से। जो आदमी बिल्कुल बेहुदा बात करता है और असहिष्णु होता है उसके सामने, और उसका अगर हम सामना करना चाहते हैं तो हमारे तो उदार भाव बताना है। ऐसा हम करें और सब चीज़ में हमारी आँख पाक रहें, हमारे कान पाक रहें, हमारे हाथ पाक रहें, तब तो मैं जानता हूँ कि आप पास होने वाले हैं। और इसी तरह से जो ऐसा मानते हैं कि अभी तो हमने तो मुसलमानों के लिए एक जगह दे ली, करें तो दोनों इस तरह से अगर मुकाबला करें तो किसी को कोई कहने का ही नहीं, लेकिन वो कुछ भी करें न करें तो भी हमारे तरफ से यही जवाब मिले, तब तो मैं जानता हूँ कि दुनिया के लिए खैर है। अगर टिट फॉर टैट ही चलता रहे तो दुनिया जिंदी नहीं रह सकती है, इसमें उसको कोई शक नहीं है।